روفهی روف نیا. सुप्रिया और सिंहासन बत्तीसी। सुप्रिया और सिंहासन बत्तीसी में अभी तक आपने सुना कि कैसे हंसती खेलती सुप्रिया घर में डकैती के बाद सहम सी गई थी। उसका मन हल्का करने और वातावरण बदलने के लिए दादू दादी और सुप्रिया गांव के घर में आ गए। गांव के घर के बाहर एक नीम का पेड़ है जिस पर एक काबुली वाला आकर बच्चों को कहानियां सुनाता है। कल शाम इतनी जल्दी सोने के कारण आज सुप्रिया को गांव का सनराइज देखने का मौका मिला। वैसे तो सुप्रिया भोपाल में रोज स्कूल जाने के लिए अर्ली मॉर्निंग उठती थी, पर स्कूल के लिए तैयार होने की हसल बसल में उसने आज तक कभी भी आराम से सूर्य उदय देखा नहीं था। आंगन में पेड़ों के पीछे से धीरे धीरे आकाश में उगता हुआ सूरज कितना ब्यूटीफुल लग रहा था। नया दिन, नई उम्मीद, नई ताकत और नई अपॉर्चुनिटीज, इनके बारे में सोचते हुए सुप्रिया के दिमाग में ना जाने कैसे वह गाना आने लगा जिसे सुप्रिया दादी के साथ भोपाल में गाया करती थी। मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। दादी उसी समय आंगन में तुलसी जी को जल चढ़ा रही थी। उन्होंने सुप्रिया का गुनगुनाना सुना। दादी मन ही मन प्रसन्न हुई। उन्हें लग रहा था धीरे धीरे उनकी पहले जैसी सुप्रिया अपने फॉर्म में वापस आ रही है। दादी ने सुप्रिया का गुनगुनाने में साथ देना चाहा, पर गुड मॉर्निंग दादी, मैं नहाने जा रही हूं कहकर सुप्रिया वहां से चली गई। एकदम फ्रेश येलो और ऑरेंज वाली फ्रॉक पहनकर सुप्रिया आज सबसे पहले ब्रेकफास्ट टेबल पर रेडी थी। वह बस पापा के आने का वेट कर रही थी। आज मम्मी और दादी ने मिलकर सबका फेवरेट ब्रेकफास्ट पोहा जलेबी बनाया था। नाश्ता टेबल पर लगते ही पापा भी आ गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन कहकर पापा ने बात करनी शुरू करी। अरे वाह पोहा जलेबी, आज तो मजा ही आ गया। जानती हो सुप्रिया, पोहा जलेबी हमारे मध्य प्रदेश के लोगों का भी फेवरेट ब्रेकफास्ट है। इसके पहले कि पापा पोहा जलेबी और मध्य प्रदेश के बारे में कुछ और बोल पाते, सुप्रिया ने उनकी बात काटते हुए बोला, अरे पापा आपने बताया नहीं, क्या पुलिस उन डकैतों को पकड़ पाई? नहीं सुप्रिया, यह पुलिस के लिए भी इजी केस नहीं है। यह डकैतों का ग्रुप जहां भी जाता है, इवन जब यह अपने घर पे आए थे तब भी पूरे समय फेस मास्क पहने रहता है। अपने में से भी तो किसी ने इनका चेहरा नहीं देखा। हमने पुलिस वालों को बस यही तो बताया कि वह 8 लोग थे और उनका डील डॉल कैसा था। उसके अलावा मम्मी और मैं कुछ बता ही नहीं पाए। पापा ने ठंडी सांस लेते हुए सुप्रिया और बाकी लोगों को बोला। अचानक सुप्रिया फिर बीच में बोल पड़ी, पापा मैं शायद कुछ हेल्प कर सकती हूं। नहीं सुप्रिया, तुम क्या हेल्प करोगी बेटा, माइनर्स पुलिस स्टेशन में अलाउड नहीं है। मैं और मम्मी देख रहे हैं, तुम लोगों के गांव आने के बाद 3-4 दिन कंटिन्यूअसली सब इंस्पेक्टर मिस्टर गुप्ता अपने 2 कॉन्स्टेबल्स के साथ सुबह शाम घर आकर क्लूज और एविडेंसेस कलेक्ट करते रहे। फिर 2 दिन कोई आया ही नहीं, तो मैं पुलिस स्टेशन गया। वहां जाने पर मुझे पता चला कि पुलिस काफी परेशान है। जैसे भोपाल में घटनाएं हो रही थी, अब एकदम वैसी ही घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं। न्यूज यह है, राजस्थान में उन चोरों ने जिस घर में डकैती करी है वहां सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड हैं। देखो, जल्द ही कुछ इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। मम्मी प्लीज, अब मैं भी आप लोगों के साथ भोपाल चलूंगी, सुप्रिया ने थोड़ा क्रैंकी होकर मम्मा से बोला। अपनी चेयर से उठकर मम्मी सुप्रिया के पास आई, उसकी प्लेट में थोड़ा पोहा देते हुए बोली, बेबी आप गांव में ही रहें दादा दादी के साथ, कुछ भी खबर आएगी तो मैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करूंगी। दादाजी ने बात पलटते हुए बोला, अरे इन सब बातों में आप लोग ये मत भूलिए कि आपकी दादी ने आज अपनी पुरानी पड़ोसन और बहुत ही खास गांव की सहेली को सब परिवार भोजन के लिए बुलाया है। कल ये मेन्यू बता रही थी तो ऐसा लग रहा था जब सारा घर मिलकर खाना बनाएगा तब इतनी वैरायटी का खाना बन पाएगा। उसी समय सुप्रिया के कानों में काबुलीवाला के डमरू की आवाज पड़ी। झटपट अपनी चेयर से उठकर वह बोली, बाय, सी यू ऑल आफ्टर सम टाइम, और नीम के पेड़ की तरफ भाग गई। पेड़ के नीचे काबुलीवाला अपना डमरू बजाता हुआ रोज की तरह बच्चों को बुला रहा था, शानू पिंकी बल्लू राधा, शानू पिंकी बल्लू राधा, आओ सुनाता हूँ तुमको कहानी जिसमें बहुत सारे राजा और बहुत सारी रानी। सारे बच्चे नीम के पेड़ के नीचे भागे चले जा रहे थे। उनकी जगहें अब कहाँ किसको बैठना है फिक्स हो गई थी। सब बच्चे चुपचाप आकर अपनी अपनी प्लेसेस पर बैठ गए। काबुलीवाला ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। राजा भोज, मेरा नाम कुमोदी है। मैं इस सिंहासन से जुड़ी 32 पुतलियों में से एक हूं। मैंने राजा विक्रमादित्य का अद्वितीय पराक्रम, धर्म और अतिथि सत्कार देखा है। आप इस सिंहासन पर विराजमान होने के पूर्व मेरी यह कथा सुने, इसके बाद निर्णय लें कि आप सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं अथवा नहीं। अपनी बात कहने के पश्चात कुमोदी ने राजा भोज को विक्रमादित्य की यह कहानी सुनानी शुरू करी। एक दिन महाराजा धीराज विक्रमादित्य शिप्रा नदी के तट पर अपने स्वर्ण महल की वाटिका वाले हिस्से में टहल रहे थे। अचानक उनकी नजर एक गरीब ब्राह्मण की कुटिया पर पड़ी। कुटिया के भीतर से रोने की बहुत आवाजें आ रही थी। विक्रमादित्य से रुका नहीं गया, उन्होंने कुटिया के अंदर झांक कर देखा। एक ब्राह्मण, उसकी पत्नी और लड़का बहुत बुरी तरह रो रहे थे। कुटिया की हालत देखकर विक्रमादित्य को ब्राह्मण की परिस्थिति का अनुमान लग गया। विक्रम ने जैसे ही ब्राह्मण से पूछा, यह सब कैसे हुआ? ब्राह्मण और जोर जोर से रोने लगा और बोला, हम जन्म जात अत्यंत निर्धन है राजन। निर्धनता के कारण मैं पढ़ लिख ना सका। बचपन में ही मेहनत मजूरी के कार्य में लग जाना पड़ा। उसी को आजीविका का साधन बना लिया। श्रम करने वाला कभी भूखा नहीं मरता, यह अटल सत्य है। तुम और तुम्हारा परिवार क्यों भूखे मर रहे हो, यह बात कुछ समझ नहीं आई? विक्रम ने ब्राह्मण से पूछा,
राजन आपके राज्य की व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ सभी लोग अपने हाथों से अपना काम कर लेते हैं, अतः श्रम का महत्व और मूल्य ही नहीं रहा।
ब्राह्मण की बात सुनकर राजा विक्रम ने मन ही मन कुछ सोचा और मुस्कुराकर बोले,
कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आज से तुम मेरे अतिथि हो। अपना परिवार लेकर मेरे साथ महल की अतिथिशाला में रहो, तुम्हें वहां किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा।
ओह, एक बार फिर सोच ले राजन, ब्राह्मण बोला,
तुम्हारे कहने का क्या तात्पर्य है?
हाँ, अतिथि सत्कार सरल नहीं होता राजन। अतिथि सत्कार का धर्म निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है।
मैं निभाने का प्रयास करूंगा, विक्रम ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा।
जिस पर ब्राह्मण बोला, हम ठहरे निर्धनता में पले लोग, हमारे रहने सहने खाने पीने का ढंग एकदम अलग है। महल में रहने के तौर तरीके हमें आते नहीं है राजन। कहीं ऐसा ना हो कुछ दिनों बाद हमें वहां से अपमानित होकर निकलना पड़े।
जिस ढंग से रहना चाहते हो रहो, तुम्हारे रहन सहन की स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं बनेगा, यह राजा विक्रमादित्य का वचन है।
इस प्रकार वचन देकर राजा विक्रमादित्य उन तीनों को अपना अतिथि बनाकर महल में ले आए। महल की अतिथिशाला में उन्हें ठहरा कर इस बात का निर्देश दे दिया कि इनके खाने पीने और आराम की व्यवस्था की जाए और इनकी पूरी तरह देखभाल की जाए। गरीब ब्राह्मण और उसका परिवार महल के अतिथिशाला में ठहरने के बाद वहां मन चाही जगह पर थूकने और मलमूत्र त्याग करने लगे। उसकी वजह से महल में दुर्गंध फैलने लगी। सैनिकों ने राजा से ब्राह्मण परिवार के रहने के ढंग की शिकायत करी। विक्रमादित्य अपना दिया वचन भंग नहीं करना चाहते थे। उन्होंने बोला,
सफाई की व्यवस्था की जाए, किंतु ब्राह्मण परिवार के रहने सहने के ढंग पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, उन्हें पूरी आजादी दी जाए।
कुछ समय बाद अतिथिशाला के हर हिस्से से इतनी दुर्गंध आने लगी कि उनकी सेवा में लगे नौकर दुर्गंध को सहन ही ना कर पाए और वहां से भाग खड़े हुए। राजा ने सोचा, सेवकों को क्यों परेशान किया जाए, यह मेरा वचन है तो मैं इसे निभाऊंगा। राजा खुद ही ब्राह्मण और उसकी परिवार की सेवा में तैनात हो गया।
जल लाओ, प्यास लगी है,
ब्राह्मण ने चिल्लाकर राजा से कहा।
भोजन लगाओ, भूख लगी है,
ब्राह्मण की पत्नी ने बोला।
यहां से खाने पीने के पात्र तो उठाओ,
लड़के ने आदेश देते हुए कहा। राजा विक्रमादित्य स्वयं भाग भाग कर उनके लिए पानी, भोजन और सफाई की चीजें लाता रहा। आप अकेले यह सब क्यों कर रहे हैं राजन? आपके सेवक कहाँ गए? ब्राह्मण ने प्रश्न किया। सेवकों की आप चिंता ना करें, आपका सबसे बड़ा सेवक स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित है। ब्राह्मण, आप आज्ञा करते रहें। राजा विक्रमादित्य ने इस बात की शिकायत भी नहीं की कि वहां दुर्गंध के कारण सेवक भाग खड़े हुए। दुर्गंध के कारण राजा का भी बुरा हाल था, पर वह कुछ नहीं कह रहे थे।
राजा, पैर में दर्द हो रहा है, पैर दबाओ।
ब्राह्मण पैर फैलाकर लेट गया और राजा को आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य उसके पैर दबाने लगा। ब्राह्मण गहरी नींद सोता रहा। राजा उसे पंखा कर सुलाते रहे, मगर उनके माथे पर शिकन तक नहीं आई। ब्राह्मण की ओर से आदेश दिया गया कि उसके शरीर पर लगी गंदगी साफ की जाए, उसे नहलाया जाए। राजा विक्रमादित्य ने उसके आदेश का पालन किया। राजा ब्राह्मण के मल मूत्र लगे शरीर को अपने हाथों से साफ करने लगा। अचानक ब्राह्मण के चेहरे पर तेज चमकने लगा और प्रकाश की किरणें उठने लगी। उसके तन से फटे चिथड़े लुप्त हो गए। उनकी जगह देवताओं के परिधान से उसका तन सज गया। उसने हर्ष से गदगद भाव में राजा को गले से लगा लिया। राजा ने देखा कि ब्राह्मण का कायाकल्प होने के साथ ही उसकी पत्नी और पुत्र का भी कायाकल्प हो गया है। ब्राह्मण की पत्नी परीलोक की सुंदर स्त्री और पुत्र देवपुत्र में बदल गए हैं। उसके साथ ही राजमहल अद्भुत सुगंध से भर गया। जहां जहां गंदगी और मलमूत्र था, वहां हीरे मोती जगमगाने लगे। सारा वातावरण सुगंधित हो गया। ब्राह्मण ने राजा को गले से लगाकर कहा, मैं वरुण देव हूं राजा विक्रमादित्य। हम सब परिवार तुम्हारे अतिथि सत्कार और प्रजापालक होने की परीक्षा लेने आए थे। आप परीक्षा में खरे उतरे। आपके राज्य में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। आपके राज्यों के खेत में तीन फसलें लहलहाया करेंगी। ऐसा कहकर वरुण देव सपरिवार अंतर्धान हो गए। इस कथा को सुनाकर पुतली कुमोदी ने कहा, क्यों राजा भोज, क्या तुम इतने धैर्य और विश्वास के साथ किसी अतिथि का सत्कार कर सकते हो? शायद नहीं। हे राजन, तुम इस बात का वर्णन नहीं कर सकते कि कण कण में भगवान है। हर प्राणी की सेवा करना राजा का कर्तव्य है। अगर तुमने ऐसा एक भी कार्य किया है जिसमें अपने प्राणों पर खेलकर गरीब प्रजा की जान बचाई है तथा उनका इतना मनोयोग और अतिथि सत्कार किया है, तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। राजा भोज पुतली की कहानी सुनकर उस दिन भी उदास होकर अपने शयन कक्ष की ओर लौट गए। अगले दिन राजा भोज अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ जल्दी सोकर उठ गए। उन्होंने अपने मंत्रियों और राजदूतों के साथ महल में जाने की इच्छा प्रकट करी। कहानी खत्म करते साथ ही काबुलीवाला रोज के मुकाबले ज्यादा जल्दी जल्दी अपना बोरिया बिस्तर उठाकर भागने की तैयारी करने लगा। तभी एक बच्चे ने पीछे से चिल्लाकर बोला, क्यों काबुलीवाला, कहां भागे जा रहे हो?
क्या आज तुम्हारे घर में मेहमान आने वाले हैं? क्या तुम भी राजा विक्रमादित्य की उनकी की तरह उनकी सेवा करना चाहते हो?
उतने में दूसरा बच्चा बोला,
अरे वाह, क्या आइडिया आया है। आज कहानी के बाद कोई घर नहीं जाएगा। चलो हम सब पुरानी हवेली चलते हैं और वहाँ आज अतिथि अतिथि खेलेंगे। चलो सब लोग चलो, बहुत मजा आएगा।
सारे बच्चे एक के पीछे एक भागकर पुरानी हवेली की तरफ जाने लगे। बच्चों की उथल पुथल से सुप्रिया को ध्यान आया कि आज उसके घर भी दादी की फ्रेंड आने वाली है। सुप्रिया एक्साइटेड होकर उठी और अपने घर भाग गई। गेट खोल के वह जैसे ही अंदर आई तो देखा रामू काका शॉपिंग बैग लेकर बाहर जा रहे हैं। उसने रामू काका से पूछा,
रामू काका आज डिनर का क्या मेन्यू है? सुबह दादाजी कुछ बता रहे थे।
अरे बिटिया,
ये तो तुम्हारी दादी और मम्मी को ही पता होगा। बिटिया,
मुझे तो दादी साहब ने बोला बाजार जाओ, मटर पनीर आलू प्याज लेके आओ, तो मैं जा रहा हूँ। तुम रसोई में जाओ, वहाँ देखो क्या बढ़िया बढ़िया सुगंध आ रही है।
कहकर रामू काका बाजार की ओर चले गए। सुप्रिया कूद कर किचन में पहुंची।
दादी मम्मी, क्या मेरे लिए कोई काम है? मैं आज आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ।
दादी, जब आपकी फ्रेंड आएंगी तो मैं विक्रमादित्य के जैसे उनका अतिथि सत्कार करूंगी।
सुप्रिया दादी और मम्मी से बोली। दादी ने हंसते हुए कहा,
अतिथि सत्कार, इसका मतलब भी पता है तुम्हें? अच्छा ठीक है, मैं सुप्रिया की हेल्प लूंगी, लेकिन एक शर्त पर।
दादी ने मौके पर चौका मारते हुए बोला,
क्या कंडीशन दादी?
काम करते करते सुप्रिया को मेरे साथ हमारा पुराना गाना गाना पड़ेगा। सिंपल।
यस दादी, फॉर श्योर, आप स्टार्ट करिए।
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना।